अभूतपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी। उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
पूर्वोत्तर डायरी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारी। तो आधे घंटे के इस सफर में हम देश के पूर्वोत्तर राज्यों में आपको लिए चलते हैं। आप पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता, पारंपरिक विरासत और सहजता को महसूस करेंगे। तो आइए चलें पूर्वोत्तर। सबसे पहले बात नागालैंड की। नागालैंड के रहने वाले सभी लोग आपसी सद्भाव और प्रेम की मिसाल रखते हैं। नागालैंड की लोथा और सुमी जनजाति के सुंगी की फिल्मी समुदाय द्वारा की जाने वाली पारंपरिक स्थानीय मछली पकड़ने की कला बेहद अनूठी है। इसमें देखने की बात यह होती है कि मछली को किस तरह से पकड़ा जाता है। लंबे समय से चली आ रही ये परंपरा गहरा सांस्कृतिक महत्व रखती है, जो समुदायों के बीच भाईचारे का भी प्रतीक है। इन अंतर जनजातीय प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य सदियों पुरानी जनजातीय परंपराओं और संस्कृतियों को संरक्षित और साथ ही साथ बनाए रखना है। इसके साथ ही विभिन्न समुदायों और गांवों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी समृद्धि को बढ़ावा देना भी है। वोखा से ये रिपोर्ट भेजी थी योहाना मुरी ने। आइए अब चलें मेघालय। मेघालय लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता का घर है। चाहे सुरम्य परिदृश्य देखना हो, सुंदर स्थानों की खोज करनी हो या जीवंत संस्कृति का आनंद लेना हो, तो मेघालय कुछ बेहतरीन यात्रा के अनुभव प्रदान कर सकता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी भी इस राज्य में बहुत प्रसिद्ध है और अक्सर यहाँ आने वालों को यह आकर्षित करती है। अच्छा, ये बताइए कि अनूठे स्वाद से भरा रसीला स्ट्रॉबेरी का फल आपको कैसा लगता है? हमें अच्छी तरह पता था कि आपका जवाब कि ये फल किसे पसंद नहीं है। सवाल पर सवाल का जवाब है कि सभी को बेहद पसंद है। पर्यटन और कृषि तथा किसान कल्याण विभाग ने एक आयोजन किया है। ये स्ट्रॉबेरी उत्सव या स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल कहें, 5 अप्रैल से शुरू हुआ और ये 13 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि ये समय राज्य में स्ट्रॉबेरी के पौधे को उपजाने का सबसे सही समय है। हमारे कोहिमा संवाददाता ने एक रिपोर्ट भेजी है। इसके मुताबिक इसका आयोजन का पहला लक्ष्य तो इस राज्य के इस रसदार स्ट्रॉबेरी के बारे में प्रचार करना है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी महोत्सव, इसकी खेती देखने और इस फल के बारे में बहुत कुछ जानने और बहुत कुछ समझने का भी एक सही अवसर प्रदान करता है। कृषि और पर्यटन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बढ़ाने के लिए भी एक शानदार पहल है और साथ ही संभवतः इसकी जानकारी मिलने के बाद किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए वे उत्साहित होंगे और उनको प्रेरणा मिलेगी। विभिन्न केंद्रीय और राज्य कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में बागवानी का ये सही समय है कि बड़ी संख्या में यहाँ स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाएं। पूर्वोत्तर के साथ ही देश भर में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकें और प्रचार अभियान में तेजी आ रही है। असम में मुख्य चुनाव अधिकारी अनुराग गोयल ने कहा कि पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए असम पूरी तरह से तैयार है। असम के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ अनुराग गोयल ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 60 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं और अतिरिक्त बल भी समय पर उपलब्ध हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सुचारू रूप से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने की भी व्यवस्था की है। राज्य में मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का उपयोग होगा और निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित शिकायत दर्ज करने के लिए भी सी विजिल ऐप की शुरुआत की है। चुनाव आयोग शिकायत प्राप्त होने के 100 मिनट के भीतर ही समस्या को देखेगा और उसका समाधान करेगा। आचार संहिता लागू हो चुकी है। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं कि सिक्किम में एक साथ होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए कुल 13 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। राज्य में लोकसभा की एकमात्र और विधानसभा की 32 सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस बार लोकसभा के लिए एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार और विधानसभा चुनाव के लिए 12 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं और मौजूदा राज्य विधानसभा की अगर हम बात करें तो 3 महिला उसमें अभी विधायक हैं। सिक्किम विधानसभा गठन के लिए सिक्किम में चुनाव 19 अप्रैल को ही होना है और लोकसभा चुनाव भी उसी दिन है, तो चुनाव की तैयारी के बारे में जानकारी देने के लिए अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती पेमा लांदेन लामा से आज बात कर रही हैं हमारी गैंगटॉक संवाददाता उषा शर्मा।
नमस्कार श्रोताओं, 18वीं लोकसभा और 11वीं सिक्किम विधानसभा चुनाव पहले चरण में ही आगामी 19 अप्रैल को होनी है। आम चुनाव 2024 की तैयारी के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिक्किम श्रीमती पेमा लांदेन लामा। सबसे पहले मैं स्वतंत्र निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव के लिए विभाग किस प्रकार की तैयारी कर रहा है इस बारे में हमारे श्रोताओं को अवगत कराने के लिए निवेदन करती हूँ।
नमस्कार मैम, मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि हम लोगों का तैयारी शुरू हुआ लास्ट ईयर से, मतलब 2023 के मिडिल ऑफ द ईयर से, जहाँ हम लोगों ने शुरुआत की पहले ट्रेनिंग ऑफ स्टेट लेवल ट्रेनर्स का, जो इवेल्युएशन देके फिर वो लोग बने नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स। फिर ये सब ट्रेनर्स आके हमारे डीसीज, एडीसीज, एसडीएम, जो कि अभी हमारे इलेक्शंस के लिए आरओस बने हुए हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स बने हुए हैं, ये ट्रेनिंग हुआ था नवंबर, लगभग नवंबर के आसपास। उसके बाद से जनवरी से लेके अभी तक हम लोग ट्रेन कर रहे हैं पोलिंग पर्सनल्स को, हम लोग ट्रेन कर रहे हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को, इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के ऑफिसर्स को, तो ये सब ट्रेनिंग चल रहा है। तो अभी हम ऐसे टाइम में पहुंचे हुए हैं कि हम लोगों का सब ट्रेनिंग खत्म हो गया है, अब सिर्फ लास्ट एक ट्रेनिंग ऑफ पोलिंग पर्सनल्स बचा हुआ है, जो पोलिंग के कुछ दिन पहले होगा।
जी, चुनाव के लिए स्थापित किए गए मतदान केंद्रों और इन केंद्रों में विभिन्न वर्ग के मतदाताओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्था की गई है इस बारे में भी जानकारी दी।
हमारे सिक्किम में टोटल पोलिंग स्टेशन 573 है। हर एक पोलिंग स्टेशन में आपको अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी मिलेगी। इसके ऊपर से जो हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है या हमारे सीनियर सिटीजन्स है या प्रेग्नेंट लेडीज है, उनके लिए हमारे पास हमने अदर फैसिलिटीज भी रखी हुई है, जैसे कि सेपरेट क्यू फैसिलिटीज है, उन लोगों को आसानी से अंदर जाने और आने में उनको एक ये सुविधा होगा। उसके ऊपर से भी है प्रोविजन फॉर व्हील चेयर, अगर किसी को व्हील चेयर की जरूरत हो, देन देयर इज ब्रेल बैलेट पेपर, देन अगर किसी को किसी तरह की सहायता चाहिए तो वो लोग अपना कंपेनियन या एक साथी भी लेके जा सकते हैं। ये सब फैसिलिटी उन लोगों के लिए है। एंड ऑल्सो जो सीनियर सिटीजन है या हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स है, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं वोटिंग के लिए, वो लोग होम वोटिंग के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं।
जी,
तो ये फैसिलिटी भी है अभी।
और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, मतदान करने के लिए विशेषकर युवा मतदाताओं को विभाग ने किस प्रकार का कार्य किया और अभी भी कुछ कार्य कर रहा है कि नहीं?
ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम तो हम लोगों का पहले से ही चल रहा है, हर एक साल होता है, क्योंकि इसीलिए हम लोग ऑल इंडिया रेडियो के साथ भी कोलैबोरेट करके हम बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इस साल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कोलैबोरेट किया हुआ है, जहाँ पे वीव आस्क्ड देम टू इंस्टीट्यूशनलाइज ELCs जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स होते हैं, और फिर स्टूडेंट्स का हेल्प लिया है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो 17 प्लस के स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग दे के उन लोगों को कैंपस एम्बेसडर्स बना रहे हैं, जो लोग अपने कैंपस में वोटर्स लोग जो आते हैं उन लोगों को अगर किसी भी तरह का जरूरत, एनी काइंड ऑफ हेल्प इफ द वोटर्स नीड, देन ये कैंपस एम्बेसडर्स अपना हेल्प एक्सटेंड करेंगे। सो ये काम किया हुआ है। सो HRDDC से कोलैबोरेट करने से क्या हुआ कि वी कुड ऑल्सो डू प्रोग्राम्स लाइक मैराथन फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, और अभी हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं कॉल्ड व्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, जो हर एक क्षेत्र में जाके, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके अगेन द मैसेज ऑफ ECI को लेके जाएंगे, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट क्विज कॉम्पिटिशन भी कराएंगे। और अगर किसी भी, मतलब किसी भी आम व्यक्ति को अगर कोई किसी प्रकार का क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट हो रिगार्डिंग इलेक्शन, वोटिंग या एनीथिंग, तो वो लोग जाके अपना डाउट क्लियर वहाँ पे करवा सकते हैं। ये सब हो रहा है। दिस टाइम वी ऑल्सो कोलैबोरेटेड विद सोशल वेलफेयर, क्योंकि हमारे जितने भी ट्रेनिंग हुए है, हर एक ट्रेनिंग में वी हैव आस्क्ड सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट टू कम एंड इम्पार्ट ट्रेनिंग, एंड ऑल्सो टू सेंसिटाइज, सब पोलिंग पार्टीज को सेंसिटाइज करवाया है फॉर PWD वोटर्स एंड सीनियर सिटीजन की, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए।
जी,
तो ये किया है हम लोगों ने।
अब अंत में एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे मतदाताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो हर एक वोटर को, जो हमारे 4,66,000 वोटर्स है, हर एक वोटर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब लोग अपने घर से बाहर आके 19th को सब लोग अपने घर से बाहर आके वोट कीजिए, बिकॉज ये एकदम इम्पोर्टेंट राइट है। और ये जो राइट है, ये हमको सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने को मिलता है। तो आप घर से बाहर निकलिए, अपना वोट दर्ज कीजिए और अपना ये राइट को एक्सरसाइज, फुली एक्सरसाइज कीजिए।
अपने अत्यंत व्यस्त समय में भी आपने हमारे स्टूडियो में आकर कार्यक्रम के लिए चुनाव 2024 की तैयारी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी प्रदान किया, इसके लिए आपको हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू सो मच।
अभी आप सुन रहे थे सिक्किम राज्य में चुनाव की तैयारी के संबंध में अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीमती पेमा लांदेन नामा से लिया गई ये भेंटवार्ता। भेंटकर्ता थी उषा शर्मा। इस बीच मणिपुर में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के बाद बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के शेष हिस्से के साथ ही 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीटों पर मतदान इस महीने की 26 तारीख को होने वाला है। बाहरी मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र के एक हिस्से में पहले चरण में मतदान होगा। मिजोरम में मतदान आइजोल मिजोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी और आइजोल की जिला निर्वाचन अधिकारी नाजुक कुमार ने कहा कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से मतदान करने की शुरुआत 8 अप्रैल से हो जाएगी। और मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए घर से मतदान की शुरुआत होगी 8 अप्रैल से और ये चलेगी 10 अप्रैल तक। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनावों की घोषणा होने के बाद अभी तक आदर्श आचार संहिता की अवमानना का कोई मामला सामने नहीं आया है। मिजोरम में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। अब त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार में तेजी आ रही है। दिनों दिन प्रचार अभियान तेज हो रहा है। त्रिपुरा पश्चिम सीट पर 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इस सीट के लिए 19 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। असम में दूसरे चरण के मतदान की भी बात कर लेते हैं। 65 उम्मीदवारों ने अभी तक नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। इस चरण में असम में 5 सीटों में मतदान होगा और भाजपा की ओर से असम के परिवहन और उत्पाद शुल्क मंत्री परिमल शुक्ला बैज हैं और कांग्रेस ने नौगांव सीट से सांसद प्रद्युत बोर्दोलोई को फिर से उम्मीदवार बनाया है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट भी मैदान में है। उसने दूसरे चरण में विधायक दुर्गादास बोरो को टिकट दिया है। दूसरे चरण के चुनाव में AIUDF और तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इस सप्ताह मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव में भ्रामक सूचनाओं के प्रसार से निपटने के लिए मिथक और वास्तविकता के नाम से एक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। इसे निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसके जरिए सूचनाओं की पुष्टि, भ्रामक सूचनाओं और मिथकों के प्रसार पर रोक लगाने और आम चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इस प्लेटफॉर्म पर चुनाव से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहे मिथक और कुछ महत्वपूर्ण अन्य विषय जो हैं, आमतौर पर उस पर पूछे जाने वाले सवाल और सभी संबंधित पक्षों के लिए विभिन्न वर्गों के अंतर्गत संबंधित सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। इस प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं को नियमित आधार पर अपडेट किया जा रहा है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश। भारत के अभिन्न अंग अरुणाचल प्रदेश की छटा एकदम निराली है। शब्दों में इसकी सुंदरता और वहाँ के लोगों की सहजता को बांधना कुछ मुश्किल है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा नागालैंड और असम से भी मिलती है। इस राज्य में पहाड़ी और अर्ध पहाड़ी क्षेत्र हैं, यानी भूभाग में कुछ हिस्सा पहाड़ी भी है और मैदानी भी। इसके पहाड़ों की ढलान असम राज्य के मैदानी भाग की ओर जाती है। कामेंग, सुबनसिरी, सियांग, लोहित और तिरप नदियाँ इसे अलग अलग घाटियों में विभाजित कर देती हैं। अरुणाचल का अधिकांश हिस्सा हिमालय से ढका है, लेकिन लोहित, चांगलांग और तिरप पत्काई पहाड़ियों में स्थित है। कांगतो, नियेगी, कांगसांग, मुख्य गोरीचन चोटी और पूर्वी गोरीचन चोटी इस क्षेत्र की हिमालय की सबसे ऊंची चोटियां हैं। तवांग में स्थित बुमला दर्रा 2006 में 44 वर्षों में पहली बार व्यापार के लिए खोला गया। दोनों तरफ के व्यापारियों को एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। यहाँ के प्रमुख दर्रों में यांग्याप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसो दर्रा भी शामिल है। हिमालय पर्वतमाला का पूर्वी विस्तार इसे चीन से अलग करता है। ये पर्वतमाला नागालैंड की ओर मुड़ती है और भारत और म्यांमार के बीच चांगलांग और तिरप जिले में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है और एक प्राकृतिक बाधा के रूप में भी इसे हम कह सकते हैं कि कार्य करती है। ये पहाड़ हिमालय से कुछ कम ऊंचे हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों के जीवन की बात करें तो जीवन यापन का मुख्य आधार यहाँ कृषि है। इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था आमतौर पर झूम खेती पर आधारित है। आजकल नकदी फसलों जैसे आलू और बागवानी की फसलें जैसे सेब, संतरा और अनानास, इनकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी लोग खेती की पारंपरिक विधि शीइंग यानी झूम का प्रयोग करते हैं। इस कृषि विधि की मुख्य पैदावार चावल, मक्का, जौ और मूथी यानी कुट्टू है। अरुणाचल प्रदेश की मुख्य फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, जौ, दलहन, गन्ना, अदरक और तिलहन शामिल है।
अरुणाचल की बात करूं क्या है धरती की शोभा, उत्तर पूर्व भारत का है प्रदेश जो मन लोभा।
और अब अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों की बात भी करते हैं। यहाँ के समुदायों में अदीस समुदाय का मापिन और सोलंगू, मोनपा समुदाय का त्योहार लोसर, आपतानी समुदाय का द्री, टगिनो समुदाय का सी दोन्याई, इदु मिश्मी समुदाय का रेह, निशिंग समुदाय का न्योकुम, ये सब त्योहार यहाँ धूमधाम से मिलजुल कर मनाए जाते हैं। अधिकतर त्योहारों पर पशु बलि चढ़ाने की एक पुरातन परंपरा है जो अब बदल रही है। चलिए अब खूबसूरत अरुणाचल के मुख्य पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताते चलें। अरुणाचल प्रदेश अपने पहाड़ी दृश्यों के लिए बेहद प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात ईटा किला की। ईटा नगर में पर्यटक ईटा किला देख सकते हैं। इस किले का निर्माण कहते हैं कि 14वीं या 15वीं शताब्दी के मध्य किया गया था और इसके नाम पर ही ईटा नगर का नाम रखा गया। इस किले में कई खूबसूरत दृश्य आप देख सकते हैं। किले की सैर के बाद आप यहां एक पौराणिक गंगा झील कही जाती है उसका आनंद भी ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य झीलें भी हैं। इसके साथ ही वास्तुकला के मनोहर दृश्य हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो चलिए अब पौराणिक गंगा झील के बारे में बात करते हैं। गंगा झील ईटानगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। झील के पास एक खूबसूरत सा जंगल भी है। ये जंगल इतना खूबसूरत है कि लोग यहाँ सुंदर पेड़ पौधे, वन्य जीव, फूलों के बागीचे देख सकते हैं। यहाँ आने वाले लोगों को इस झील और साथ ही लगे जंगल की सैर जरूर करनी चाहिए। और अब बात बौद्ध मंदिर की।
नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स।
नामसाई स्थित स्वर्ण पैगोडा यहाँ का एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर है। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी इसकी यात्रा कर चुके हैं। इस मंदिर की छत पीली है और इसका निर्माण तिब्बती शैली में किया गया है। इस मंदिर की छत से पूरे ईटानगर के खूबसूरत दृश्य देखे जा सकते हैं। इस मंदिर में एक संग्रहालय का निर्माण भी किया गया है। इसका नाम जवाहरलाल नेहरू संग्रहालय है। यहाँ पर पर्यटक समूचे अरुणाचल प्रदेश की बहुत खूबसूरत मन लुभावनी तस्वीरें देख सकते हैं, यानी ऐसे प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लकड़ियों से बनी खूबसूरत वस्तुएं, वाद्य यंत्र, शानदार कपड़े, हस्त निर्मित वस्तुएं और केन की बनी सुंदर कलाकृतियां भी देखी जा सकती हैं। संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी बनाया गया है। यहाँ पर्यटक कई शानदार अन्य पर्यटन स्थलों की सैर भी कर सकते हैं। इनमें जो मुख्य हैं वो हम आपको बताते हैं, दोनी पोलो विद्या भवन, विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी उद्यान और अभियांत्रिकी संस्थान इनमें प्रमुख हैं। तो चले आइए अरुणाचल प्रदेश। वो उत्तर का समूचा इलाका हवाई, सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। कोई भी जगह अब दूर नहीं, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें। आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और अद्भुत कौशल को देखेंगे और वहाँ की सहजता के साथ उसे महसूस भी करेंगे। तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी अमन्नयार्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनार तीर्थ कत युग धरी आहि से प्रकाशी अमन्नयार्थ। महाबाहु ब्रह्मपुत्र কান্ন কুবজরে পরা বার ভূঁয়া আহিছিলে সেই বংশতে শঙ্কর দেউ ইয়াতে জন্মিলে।
इसके साथ ही अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है। कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है। हमारा ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com। प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044 9289094044।
মরুর দেখরে আজান ফকিরে মধুর জিকির রসিলে দিল্লির দিলওয়ারে আহি হস্তি।
তো আপ চলতে হ্যাঁ, আগলে রবিবার ফির মুলাকাত হোগি। হমেঁ অনুমতি দিজিয়ে। আলেখ অর সংকলন চন্দ্রিকা যোশী, তকনিকি সহায়ক দানিশ জেদি।
দূরর লাসিতে খরায়ে ঘাটতে কতরু আগসিলে জাতি ধর্ম ভাষা সবাকে সবে প্রেমেরে বাঁধিলে কিরাট পুত্র বিষ্ণু রাবায় মাটির সৃষ্টি দিয়ালে অমন্নয়ার দেখুয়ালে কত প্রকাশ শত স্ফূর্ত। মহাবাহু ব্রহ্মপুত্র পদ্মা নদী, পদ্মা নদীর ধুমুহাত পরি কত কত জনাইলে দুই তর দুই পারে কত না অতিথি আদরিলে।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।